आप सबको नमस्ते। तो अभी बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल पर्व बीता, नवरात्र और कल विजयादशमी थी, दशहरा। तो आप सबके लिए विजयादशमी शुभ हो। शरत ऋतु में ये नवरात्र आपके लिए जो आध्यात्मिक उन्नति का कारण बने, और विजयादशमी अपने इंद्रियों को जीतने का कारण बने। तो जैसे कि हम पिछले दो रविवार से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं, एक एक मंत्र को समझ रहे हैं। पहले हमने विश्वानि देव, फिर हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, आज तीसरे चौथे पांचवें, यह आत्मदा बलदा यह प्राणतो और ये न देवरुग्रा को समझेंगे। ये तीनों एक साथ इसीलिए, क्योंकि तीनों एक ही सुक्त से एक ही साथ आते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रहिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ऋग्वेद के 10वें मंडल 121वां सूक्त और दूसरा मंत्र है, जो यजुर्वेद में रिपीट होता है 25वें अध्याय के 23वें मंत्र के रूप में। और इसका सामान्य भाव है, यह आत्मदा बलदा, यह मतलब जो वो जो परमात्मा जो कि दामल देने वाला, आत्मा देने वाला का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को या चैतन्य या कॉन्शसनेस को, चेतना को देने वाला, बलदा जो हमें एनर्जी पावर एबिलिटी सामर्थ्य देने वाला, यस्य विश्व उपासते जिसको सारा संसार जिसकी पूजा अर्चना उपासना ध्यान करता है, और जिसकी प्रशीष जिसका जो गवर्नेंस है, उसका जो कमांड है, उसका जो आदेश है, संसार के हर देवता वो नेचुरल हो, अर्थात नेचर के जो एलिमेंट्स हैं, या मनुष्य हो, मनुष्यों में जो समझदार लोग हैं वो सब के सब उसकी उस व्यवस्था को, सिस्टम को पालन करते हैं। मृत्यु और अमृत, डेथ और इमोर्टैलिटी जिसकी अपनी कंट्रोल में है, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। सिंपल ट्रांसलेशन है, भाव देखते हैं। पहला टुकड़ा लेते हैं, यह आत्मदा बलदा, वो जो देने वाला है, दामल गिवर, क्या आत्मा और बल। अब डिक्शनरी देखें तो आत्मा मतलब सोल है और बल मतलब पावर है, पर जब आप हमारे शास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें आत्मा शब्द सिर्फ सोल के लिए नहीं आता है। किसी भी चीज का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो क्रूशियल पार्ट है, वो उसकी आत्मा कहलाता है। सपोज अभी डेमोक्रेसी है तो उसकी आत्मा कौन होगी? तो जो इलेक्शन प्रोसेस है या कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पार्लियामेंट है, वो उसकी आत्मा है ना? तो किसी भी चीज का जो सेंट्रल, जैसे आता है सूर्य आत्मा, अब ये जो पृथ्वी जो सोलर सिस्टम है उसकी आत्मा मतलब यहां जो जिसके बेस पर सब चीजें चलती हैं वो सूरज है। आत्मा शरीर के लिए भी कभी यूज होता है, माइंड के लिए भी यूज होता है, सोल के लिए भी यूज होता है, परमात्मा के लिए भी यूज होता है। डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है। तो वो परमात्मा आत्मा देने वाला है, आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है, वो तो हमेशा है, उसको देने वाला कौन होगा? चेतना को देने वाला है। जब भी कोई प्राणी पैदा होता है वो प्राणी जो मैटेरियल शरीर है, वो शरीर में जब चेतना आता है तभी हम जिंदा होते हैं, तभी लाइफ कहलाते हैं। और वो चेतना डालने वाला कौन है, आत्मा को शरीर के साथ मिलाने वाला, वो परमात्मा है। और जब हम बन जाते हैं, हमारे अंदर की जो सिक्स सेंस है, जो कॉमन सेंस है, जो हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये जो अंदर से प्रेरणा देता है वो भी परमात्मा देता है। ये सब स्पिरिचुअल एबिलिटी है। तो वो परमात्मा हमारे स्पिरिचुअल एबिलिटी स्ट्रेंथ को, चेतना को देने वाला भी वही है। और बलदा, जो भी एबिलिटी, जो भी पावर या एनर्जी हर वस्तु में है, वो सब उसी का दिया हुआ है। शेर अगर बहुत तेज भागता है और बहुत पावरफुल है, वो इसीलिए नहीं कि शेर ने उसको अर्न किया है, उसने, परमात्मा ने उसके अंदर वो बल दिया है। अगर गाय घास खाती है, दूध देती है, वैसी है, तो गाय अपने आप ऐसा नहीं है। सांप अगर दसता है, जहरीला है, वो उसका पावर है, तो वो पावर सांप ने क्रिएट नहीं किया है। पक्षी में अगर ये एबिलिटी है कि वो उड़ सकता है कितने भी दूर, वो पक्षी उसके अंदर एबिलिटी खुद पैदा नहीं किया है। हर चीज में, पानी अगर आपको डुबा सकता है, ठंडा कर सकता है, आग अगर आपको जला सकता है, हवा अगर आपको उड़ा सकता है, सूरज अगर आपको रोशनी दे सकता है, तो इसीलिए नहीं कि वो सब अपनी पावर कहीं से लेकर आए हैं, खुद बनाया है, नहीं, वो सब परमात्मा ने उनको अपने हिसाब से, जिसकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से उनको वो बल दिया है, बलदा। और हम भी जो मनुष्य, जो आम तौर पर जब हम बहुत पढ़ लिखे ज्ञानी हो जाते हैं तो बहुत अकड़ते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं,
जो आर्टिकल ये गलत निकली है,
वो चैलेंज करने की एबिलिटी हमारे अंदर कैसी आई, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे पास बुद्धि है,
एक लाइन मैंने पढ़ी उसमें,
मेरे पास टैलेंट है,
मेडिकल
बना सकता हूँ, मैं रोबोट बना सकता हूँ,
मैं
बच्चा पैदा कर सकता हूँ, मैं रॉकेट बना सकता हूँ, तो मैं तो हो
गया,
मुझे किसी की
जरूरत है।
पर ये बल तुम्हारे अंदर तुमने पैदा नहीं किया है।
दैट्स द ओनली डिफरेंस।
ये बल तुमने अपने अंदर पैदा नहीं किया है, तुमने वो, तुम्हारे पैदा होने के साथ ये बुद्धि, ये विवेक, ये शक्ति, ये तुम्हारे अंदर दी गई है। तुम उसको या तो पॉलिश करते हो, बढ़ाते हो, या अगर पॉलिश नहीं करते हो तो कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, जिसको आप कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड, टैलेंट है, पर आगे जाकर वो उसको नर्चर नहीं करते, उसको ठीक से अच्छी तरह पोषण नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि कम हो जाता है, या गलत रास्ते पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बुद्धि कम है पर बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और उसको पॉलिश करते हैं, नर्चर करते हैं और बढ़िया बनाते हैं। तो हमारे अंदर ये तो है कि मेरे बैकयार्ड में अगर आम का पेड़ है, मैं उस पेड़ का ख्याल रखूं तो आम ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, अगर ध्यान ना रखूं तो कम मिलेगा, ध्यान रखूं तो ज्यादा मिलेगा, हो भी सकता है बिल्कुल ना मिले। पर आम के पेड़ में आम लगता है, ये क्षमता मेरे में नहीं है कि मैं आम के पेड़ में आम पैदा करवा सकूं। अगर मेरे में ये एबिलिटी होती कि किसी में मैं आम के पेड़ में आम पैदा करा सकता, फिर तो मैं आम के पेड़ में आम ही क्यों, मैं खजूर भी पैदा कर सकता, मैं टमाटो भी पैदा कर सकता। नहीं, आप सिर्फ उतना कर सकते हो जितना दिया गया है। तो तुम्हारी जो एबिलिटी है, तुम्हारी जो क्षमता है, तुम्हारा जो फिजिकल पावर है, जो मेंटल पावर है, जो विजडम है, ये सब किसी और ने दिया है, और जिसने दिया वही परमात्मा है। हम भूल जाते हैं तो अकड़ने लगते। तो केनो उपनिषद में इसी अकड़ने वाले लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत कहानी बताया। बोला, एक बार देवता लोग असुरों से लड़ाई करके जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया और सबने अपनी अपनी तारीफें की एक दूसरे की कि हमने जीता, हमने जीता, हमने जीता। और देवताओं ने असुरों से जो लड़ाई जीती वो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के द्वारा दी गई बल से जीते। ध्यान रखिए, कहानी है समझाने के लिए। तो परमात्मा को लगा कि नहीं, ये देवता है, उनसे ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह के वो इग्नोरेंट की तरह, अज्ञानियों की तरह इस तरह अकड़े, इतने घमंड में आए। कोई अनपढ़ आदमी अकड़ता है तो समझ में आता है, पढ़ा लिखा आदमी को ये करना ठीक नहीं है, तो इनको कुछ सिखाने की जरूरत है। तो उन्होंने अपना एक रूप बदला, एक बड़ा अनोखा, एक वावफुल आश्चर्यजनक रूप लिया, जो बहुत अट्रैक्टिव है, जो बहुत चार्मिंग है, जो आपको खींचता है। उसका नाम केनोपनिषद में बोला यक्ष। तो ये यक्ष बन के खड़े हो गए सामने। जब खड़े हो गए, देवताओं ने कहा कि ये कौन है भाई, ये कहां से आ गया, हमने तो इसको कभी देखा नहीं था, इस तरह के कोई प्राणी को या इस तरह के कोई भी वस्तु को ऐसे हमने कभी देखा नहीं था, पता करो कौन है। तो अग्नि ने कहा मैं पावरफुल हूं, मैं जाता हूं, मैं पता करके आता हूं। अग्नि मतलब फायर, आग। तो आग गया अकड़ के। तो यक्ष के पास जब पहुंचा, यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। अग्नि ने बोला तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं आग हूं, आग। मुझे लोग जात वेद कहते हैं। ये जात वेद क्या होता है, एक वैदिक वर्ड है वो उसके लिए, अर्थात जो कुछ भी पैदा हुआ है संसार में, बना है, उसके सबको मैं जानता हूं, क्योंकि सबके अंदर एनर्जी होती है और मैं पूरे संसार में हूं। अच्छा, यक्ष ने पूछा कि तुम्हारी क्या क्या सामर्थ्य क्या है, तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कर सकते हो। बोले ये आपको पता नहीं है, सारी दुनिया जानता है, तो आप बता दो क्या कर सकते हो। मैं किसी को भी जला सकता हूं। अच्छा, तो यक्ष ने एक तिनका एक्स्ट्रा उसके सामने फेंका, बोले इसको प्लीज जला दो। तो आग ने अपनी पूरी ताकत से उसको जलाने की कोशिश की और वो जला नहीं पाया और एम्बेरेस्ड होकर के शर्म के मारे चुपचाप भाग गया बिना कुछ कहे। देवताओं को जाकर बस इतना बोला कि मुझे समझ में नहीं आया वो कौन है, ये नहीं बोला कि वो कितना एम्बेरेस्ड होकर आया। तो देवताओं ने कहा अच्छा और कौन जा सकता है। वायु ने बोला मैं जाऊंगा, मैं पावरफुल हूं, मैं पता कर लूंगा। तो वायु गया। यक्ष ने पूछा सेम क्वेश्चन, तुम कौन हो। बोले नहीं जानते हो, मैं वायु हूं, सब जगह हूं, मुझे लोग मातर ईश्वा कहते हैं, मात्र कहते हैं, ये जो इंटरनल स्पेस है, मिड स्पेस, मैं इसमें रहने वाला हूं। तो तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है, सामर्थ्य है, मैं किसी को भी उड़ा सकता हूं। अच्छा, ये एक स्ट्रॉ है मेरे पास, तीन का है, इसके जरा उड़ा के दिखाओ। तो वायु ने अपनी पूरी ताकत से उसको उड़ाने की कोशिश की पर वो स्ट्रॉ को उड़ा नहीं पाया, शर्म के मारे एम्बेरेस्ड होकर के भाग गया। फिर देवताओं ने अपने राजा को, इंद्र को भेजा कि तुम जाओ पता करो, तुम तो सबसे पावरफुल हो। तो इंद्र जब गया, तो जब गया तो यक्ष डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, और उसकी जगह एक खूबसूरत सी सुंदर सी जवान लड़की खड़ी हुई मेरी। इंद्र बोला वो कहां गया, तुम कौन हो। तो सुंदर जवान लड़की ने बोला मैं उमा हूं। तो फिर ये जो खड़ा था जिसको हम ढूंढ रहे थे वो कहां गया, वो कौन था। उमा ने बोला वो परमात्मा था, वो ब्रह्म था, जिसके कारण से तुम्हारे अंदर ये पावर है, जिसके कारण तुम्हारे देवताओं के अंदर ये शक्ति है। तो फिर मिला क्यों नहीं, वो सिर्फ तुम्हें औकात दिखाने आया था, दिखा के चला गया। तुम कौन हो। मैं उमा हूं, तुम्हारी बुद्धि हूं, समझदारी हूं, तुम्हारा विजडम हूं, तुम्हें अवेक करने आया हूं, जागृत करने। कहानी पूरी होती है, छोटी सी कहानी है, पर मैसेज यही देना था। जो लोग अकड़ में रहते हैं उनको कभी समझ में नहीं आता है, सामने परमात्मा आ भी जाए तो भी अकड़ में रहते हैं, मेरे से ज्यादा पावरफुल कौन है। किसी का फोन बज रहा है, पर जब आप अपने अपने फोन साइलेंस में रखिएगा। पर जब आप समझदारी के साथ जाते हैं, जब आपका ज्ञान होता है, जब आपकी बुद्धि होती है, जब आपका विजडम होता है, तो फिर आपकी अपनी समझदारी, आपकी बुद्धि आपको वार्निंग करती है। समझदार लोगों का मतलब जिसके अंदर समझ है कि तुम्हारा बल, तुम्हारी शक्ति, ये तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, तुम्हें दिया गया है। तुम लाइफ में जो कुछ भी अचीव करते हो, वो अचीवमेंट के पीछे तुम्हारा हार्ड वर्क तो हो सकता है, पर उसमें सिर्फ तुम्हारा क्रेडिट नहीं, और कोई पीछे बैठ के तुम्हें संचालित करता है, तुम्हारी बुद्धि को अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है, तुम्हें इतनी बुद्धि दी है या न दी है, वो बलदा वो है, तुम्हें शक्ति देने वाला वो है, उसको वो क्रेडिट दो। तो मंत्र का पहला, मंत्र का यही भाव, मंत्र के पहले वाक्य का यही भाव है। ओके, साउंड लो आ रहा है प्लीज? हाँ नहीं, अब ठीक है। ओके, ये पुराना मैसेज था। तो वो परमात्मा आत्मा दाहे, हमें स्पिरिचुअल पावर देने वाला और बलदा, जो भी हमारे अंदर, ये फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये तो लूज ट्रांसलेशन है, जो भी हमारे पास बल है, शक्ति है, पावर है, एनर्जी, वो पावर मुझ में है या सूरज में है या चांद में है, वो पावर उस परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए वो उपनिषदों में आता है कि वो सूरज की रोशनी के पीछे भी वही रोशनी देता है सूरज को रोशन करने के लिए, चांद के ठंडा रोशन देने के लिए वही चांद को प्रेरित करता है, पृथ्वी या संसार के इस अंतरिक्ष में घूमने वाले सारे स्टार्स, प्लैनेट्स को जो मूवमेंट की शक्ति भी वही परमात्मा देता है। यह आत्मा दा बलदा। अगला है, यस्य विश्व उपासते, जिसका पूरा संसार उपासना करता है, प्रशिषम यस्य देवाः, और जिसकी जो गवर्नेंस है, जिसकी कमांड, आदेश या डिसिप्लिन, उसको सारी देवताएं मानते हैं या पालते हैं या उपासना करते हैं। पहले प्रशिषम लेते हैं, ये शिष्य, शिष्य, इसी से शिष्य बना, शिष्य धातु, जिसका अर्थ होता है टू कंट्रोल, टू डिसिप्लिन, है ना, जो डिसिप्लिन्ड किया जाए उसको शिष्य कहते हैं, जिसको आप स्टूडेंट कहते हो। शासक उसी से बना, शासक जो रूल करता है, डिसिप्लिनर है, जो रेगुलेट करता है। प्रशिष जो डिसिप्लिनिंग कमांड्स हैं, जो डिसिप्लिन के लिए जो भी रूल्स या रेगुलेशन है, उसको वैदिक शब्द में प्रशिष कहा। परमात्मा की उस जो डिसिप्लिन है, जो गवर्नेंस है, जो शासन है, उस शासन को देवता लोक उपासना करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। देवता मतलब दो तरह के हैं, एक तो नेचर का हर वो एलिमेंट जो बिल्कुल कमा फुल स्टॉप के साथ फॉलो करता है परमात्मा की गवर्नेंस को, उस वो आपकी आकाश हो, अंतरिक्ष हो, सूरज हो, धरती हो, हवा हो, पानी हो, जंगल हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर कोई, हर एक के अंदर एक परमात्मा ने एक सिस्टम बना रखा है ना, जिसको आप कहते हो कि हर वस्तु के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका जो गुण धर्म है, लोहा ऐसा ही है, लोहे की कुछ पर्टिकुलर गुण है, धर्म है, सोने में है, पानी का अपना गुण धर्म है, वायु का अपना गुण धर्म समझते हैं ना, उसके अंदर उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, जैसे पानी का गुण है कि वो ठंडा करता है ना, और पानी, पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बनता है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है हर वस्तु की, ये सारे इटर्नल होते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये परमात्मा के दिया गया व्यवस्था से होते हैं। जैसे सूरज, चांद, प्लैनेट, स्टार, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पता है ना, सब स्पेस में ही लटके हुए हैं, सब झूल रहे हैं, पर कोई किसी से थोड़े टकराता है, सब एक डिसिप्लिन वहां बना हुआ है, वो डिसिप्लिन है तभी ये यूनिवर्स है, तभी हम है, तभी ये धरती है, तभी ये हवा पानी आकाश है। ये अलग अलग नहीं है। हमें लगता है पहाड़ अलग टाइप का है, पानी अलग है, हवा अलग है, पेड़ पौधे अलग हैं। नहीं, ये सब के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है, इनविजिबल अदृश्य एक हार्मोनी है। एक वो सब एक पर्टिकुलर रूल से रूल्ड होते हैं, तभी ये संसार इतना सुंदर है। ये जो लोग कोशिश करते हैं ना यूनिटी लाने का, यूनिफॉर्मिटी लाने का, होता नहीं है। यूनिफॉर्मिटी लाना सिर्फ मिलिट्री में हो सकता है, आर्मी में, या जो व्यक्ति आर्मी नेचर रखता हो, मतलब डिक्टेटरशिप, वही लाता है। यूनिफॉर्मिटी एक अननेचुरल थिंग है। कहीं कुछ काम करने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, पर नेचर तो इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। देखिए, आपको भी भगवान ने पैदा किया, सबको अलग पैदा किया, इंसान बना के पैदा किया। किसी का सकल सूरत किसी से मिलता नहीं है, स्वभाव अलग है, नेचर अलग है, टैलेंट अलग है। और कहते सब मिल जाए तो भी वो जो अंगूठा है और भी बहुत सारे चीजें डीएनए वो नहीं मिलता। ध्यान रखिए, डाइवर्सिटी इज नेचुरल, इट्स डिवाइन। यूनिफॉर्मिटी तो हम लाते हैं जबरदस्ती, क्योंकि एक लीडर को भेड़ चाहिए जो एक जैसा बन जाए तो उसको आसान होता है चलाना। या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ती है। उसके लिए हम रूल्स रेगुलेशन को थोपते हैं। इसीलिए कभी हिंदू धर्म में आप देखेंगे कलर का कोई कंसेप्ट नहीं था कि आपको पर्टिकुलर कलर पहनना है। बाकी रिलीजन में होता है और हमने उनसे अडॉप्ट कर लिया कि भाई मरते समय सफेद पहनेंगे, शादी के समय लाल पहनेंगे, इसके समय ये पहनेंगे। ये सब मॉडर्न, ये सब जो क्या कहते हैं, ये सब मिमिक्री है, कुछ नहीं था। हर कलर का अपना इंपोर्टेंस है, डाइवर्सिटी। और इतने बड़े डाइवर्सिफाइड यूनिवर्स में एक खूबसूरत हार्मोनी दिखती है, एक खूबसूरत समन्वय दिखता है। और समन्वय अपने आप तो होता नहीं ना, उसके लिए कुछ इंटरनल डिसिप्लिन्स होते हैं। वो डिसिप्लिन का नाम है रिदम। जैसे आपकी संस्थाओं में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई ऑडियो वीडियो का काम देखता है, कोई किचन का काम देखता है, कोई सफाई का काम देखता है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम देखता है, कोई स्टेज मैनेजमेंट का काम देखता है, कोई हवन करता है। सब अलग अलग है ना, पर सब अलग अलग होने से सब अलग अलग दिशाओं में नहीं काम करते हैं। उनके अंदर एक इंटरनल रूल है, इनविजिबल रूल है। सब जो कुछ भी करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। जब वो इंटरनल हार्मोनी होती है, इंटरनल सिनर्जी बनती है, तब गोल अचीव होता है। पर ऊपर से डाइवर्सिटी दिखती है और वो डाइवर्सिटी इज पार्ट ऑफ द लाइफ। तो परमात्मा की सृष्टि में ये जो डाइवर्सिफाइड यूनिवर्स है, उसके अंदर एक सिनर्जी लाने के लिए परमात्मा के करोड़ों रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब वो करोड़ों रूल्स रेगुलेशंस वही है जो आप केमिस्ट्री के बेसिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। ये बेसिक साइंस क्या है, तो डिफाइन द रूल ऑफ नेचर, द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। और जो मेडिकल साइंस में आप पढ़ते हैं इस शरीर को समझने के लिए, इस शरीर भी हर अंग अपने आप से अलग है पर अंदर सिंक्रोनाइज्ड है। तो वो सब, वो जो रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, और जब भी आप रूल तोड़ते तो गड़बड़ होता है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्यों? आपने उस परमात्मा की दी गई व्यवस्था को आप छेड़ते हो, एक्सप्लोइट करते हो। आप बीमार पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आप छेड़ते हो। शरीर की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, और शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, उसको ख्याल न रख के जब आप मनमर्जी करते हो तब हम बीमार पड़ते हैं। क्या खाना, क्या नहीं खाना, आपकी बॉडी कैसा है, बॉडी के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। आप यंग है, आपका खुराक अलग होगा। आप बच्चा है, आपका खुराक अलग है, डाइट अलग होगा। आप 70-80 के हैं, आपकी डाइट अलग होगा। अगर आप 80 में भी सोचेंगे क्यों नहीं, अगर मेरा पोता या मेरा बेटा या बेटी 20-22 साल के इतना बढ़िया बढ़िया खाना इतना खा जाते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता। दो चार दिन आप भी खा गए, फिर पता चला क्या हुआ आपके साथ। ये परमात्मा की दी गई व्यवस्था है, आप छेड़ रहे हो तो परेशानी होती है। तो हमारी बीमारियों का मूल कारण क्या है? हम बीमार पड़ते हैं दो कारण से, एक एक्सटर्नल कॉज भी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर बहुत सारे बीमारियों का कारण हम जब परमात्मा की वो सिस्टम जो बॉडी के लिए जो रूल्स बनाया उसको हम फॉलो नहीं करते। ईश्वर ने रात बनाई कि आप रेस्ट करो, दिन बनाया कि आप काम करो, आप उल्टा करोगे। रात को 3 बजे तक जागूंगा, दिन में 12-1 बजे तक सोऊंगा, ज्यादातर हमारे यंग बच्चे करते हैं। अब उनको लगता है कुछ नहीं होगा, अब कुछ इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बॉडी अभी स्ट्रांग है। जैसे ही आपकी एज बढ़ने लगता है तो बीमारियां आती हैं, फिर रोते फिरते हैं। वो बीमारियां अभी नहीं है, ये जो 20 साल के एज में 18-20-22 साल में जो अकड़ रहे थे, कुछ नहीं होता है। आप नेचर को आप मनमर्जी एक्सप्लोइट कर रहे थे, बॉडी को साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसका रिजल्ट मिलता है। शरीर के हर पार्ट क्यों वहां है उसके पीछे एक डिसिप्लिन है, उसको कैसे ध्यान रखना है उसके पीछे डिसिप्लिन है। ये परमात्मा के द्वारा बनाया गया प्रशीष है, ये गवर्नेंस के रूल हैं। और इसको जो देवता होते हैं, देवता जो एलिमेंट ऑफ नेचर है, या मनुष्यों में जो ज्ञानी स्वामी जी स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, मनुष्यों में देवता कौन है? वैसे तो शास्त्रों में आता है माता पिता गुरुजन ये सब देवता हैं, पर वो लिखते हैं जो ज्ञानी है समझदार है विद्वान है मैच्योर्ड है वो भी देवता है। ये सब देवता परमात्मा की उस व्यवस्था को समझते हैं और फॉलो करते हैं, और जो मैच्योर्ड एनफ नहीं हुआ फॉलो नहीं करता है, एक्सप्लोइट करता है अपनी राक्षसीय प्रवृत्ति के कारण, डेविल नेचर के कारण, दूसरों को परेशान करना, खुद को भी परेशान करना, एक्सप्लोइट करना। क्यों? लोग लालच, वो लालच ईर्षा द्वेष 50 चीजें आपको पता है, लोग मोह क्रोध एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यस्य विश्व उपासते, सारा संसार उसी की उपासना करता है। अगला लाइन है, ध्यान रखिए, यस्य उपासते जिसकी उपासना करते हैं और जिसकी प्रशीष को गवर्नेंस को सारे देवताएं पालन करते हैं। यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु हो, यस्य छाया, छाया कहते हैं शैडो, अमृत भी है, अमृत इमोर्टैलिटी अमरता, और मृत्यु डेथ है मरना। अब ये क्या भाव हुआ? ये दोनों परमात्मा के अपने अस्त्र कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मृत्यु भी उसी वही देता है, अमरत्व भी वही देता है। मरना पार्ट ऑफ नेचर है, जो भी पार्ट ऑफ नेचर होता है सब परमात्मा के द्वारा बनाया गया होता है, ध्यान रखिएगा। वो उसी की व्यवस्था है, और व्यवस्था क्या है, रूल क्या है, परमात्मा की प्रशीष गवर्नेंस क्या है, कि जो कुछ भी पैदा होगा उसको मरना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी करके 10 साल 5 साल 20 साल एक्स्ट्रा जी सकते हो, पर मौत को टाल नहीं सकते हो। आपको पता है जब आप पुराण की कहानियां पढ़े होंगे, जिन लोगों ने माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ा होगा, जो इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज, उसमें जो असुर लोग होते हैं ना, वो असुर कौन है? ये तो सारे इंसान ही होते हैं, पर किसी कारण से जब उनके पास बहुत पावर आ जाता है, वो मेडिटेशन के कारण का जो उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर आया या फिजिकल पावर आया रूल करने का पावर आया, तो वो बड़े अकड़ने लगते हैं। और क्या करते, जब वो मेडिटेशन या साधना वगैरह करके तो काफी सारा बल पैदा करते हैं, और चाहते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी भगवान को खुश करते हैं, शिव को खुश करते हैं, ब्रह्मा को खुश करते हैं, फिर जब वो खुश हो जाते हैं बोलते हैं क्या चाहिए, अमर बनाओ। और गीता में आता है ये अमर की बर मांगने वाले सारे राक्षसी होते हैं। अच्छा अमर क्यों बनाए, क्योंकि हमें राज करना है। तो फिर वो बेचारा शिव ब्रह्मा तो मानते नहीं है, विष्णु भी नहीं मानते, और वो शिव कहते हैं भोले भाले हैं, फिर उनको पटा देते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ करके फिर वो मान जाते हैं। फिर जो मान जाते हैं तो फिर ये फिर बड़ी समस्या होती है, फिर वो ब्रह्मा विष्णु या देवता जाकर कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ, शिव जी महाराज अभी जरा इतने ज्यादा मत भोला दिखा, भोलापन दिखाओ, वर देने से पहले रुको, समझाते हैं। अब पता है उसको अमर बनाने से क्या होगा। अच्छा अच्छा खैर भाई देखो भाई अमर तो नहीं बना सकते, और कुछ मांग लो। अभी होली में आप कहानी पढ़ते हैं तो हिरण्यकश्यप ने बोला अमर बनाओ, दे अमर तो बना नहीं सकते, और कुछ मांगो। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा करो मैं दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा, मंजूर। किसी तलवार से नहीं मरूंगा, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, मंजूर। किसी बॉडी पार्ट से नहीं मरूंगा, कोई बॉडी के पार्ट से नहीं मरूंगा, अच्छा मंजूर। पानी में नहीं मरूंगा, आग में नहीं मरूंगा, हवा में नहीं मरूंगा, मंजूर। धरती में नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, अंतरिक्ष में, मंजूर। सब मंजूर है पर अमर नहीं बना सकते। फिर जब मारने की जरूरत, क्योंकि जब आपको इतने सारा पावर मिल जाता है फिर आप हिटलर बनते हैं, स्टालिन बनते हैं, लेनिन बनते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, यही तो बनते हैं जब पावर होता है। और क्या होता है जब जब एब्सोल्यूट पावर आता है तो यही होता है। अरे ये पौराणिक राक्षस कौन है, यही है जो आजकल के भी राक्षस हैं, जो मारने के लिए अपने पावर को यूज करते हैं। तो फिर उसको मारने के लिए रास्ता क्या ढूंढा, ना दिन में मारे ना रात में मारे, वो शाम को मारा। बोले ये तो दिन नहीं है कि रात नहीं है। अच्छा तलवार किसी अस्त्र से नहीं मार सकते हो, शरीर के अंग से नहीं मार सकते हो, नाखूनों से मारा। बोले नाखून से पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है, ना अस्त्र भी नहीं है। अच्छा बाहर नहीं मार सकते हो, अंदर नहीं मार सकते हो, दरवाजे के बीच में वो जो होता है ना थ्रेस होल्ड वही पकड़ा। अच्छा जमीन में नहीं मार सकते हो, धरती हो, आकाश में नहीं मार सकते हो, मिड स्पेस में नहीं मार सकते हो, दोनों ने उसको गोद में लेकर के गोद में मारा। ये स्टोरी है, स्टोरी आपको एक मैसेज देने के लिए, क्या तुम कुछ भी बर मांग लो, कुछ भी कर लो, साइंस कितना डेवलप कर लो, स्पिरिचुअली कितना एडवांस्ड हो जाओ, मरना ही मरना पड़ेगा। तुम प्रेसिडेंट का अपना बन जाओ, इंद्र का शिष्य बन जाओ, शिव ब्रह्मा विष्णु जिसके भी माइथोलॉजिकल गॉड हैं सबको अपना बना लो, मरना तो पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो परमात्मा ही मरने की व्यवस्था करता है तो सबको मरना है, और अमृत भी उसी के हाथ में है। फिर आप कहोगे जी अमृत कहां से, आपने तो बोला मरना पड़ेगा। अमृत क्या है, मरना एक रिलेटिव वर्ड है। मरना पड़ेगा मतलब उन्हीं को मरना होता है जो पैदा होते हैं या बनते हैं। मरना एक धर्म है, गुण है, किसका, जो क्रिएटेड हैं, जो मेड हैं, जो बर्न है। जो भी पैदा होगा वो मरेगा। तो ना मरने का रास्ता क्या है, पैदा ना होना। अगर आप किसी हालत किसी तरीके से अपने आप को अनबर्न बना दें, अज बना दें, अनमेड बना दें, फिर आपका नष्ट नहीं है। वो कब होगा, जब आप मुक्ति को पा लेते हैं, शरीर के जन्म दोबारा पैदा होने को जब आप रोक देते हैं तो दोबारा मरने को भी रोक देते हैं। ये जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है, आपने उसको रोक दिया, उसी को कहते हैं मोक्ष और मुक्ति। वही है स्टेट ऑफ इमोर्टैलिटी, क्योंकि वहां पैदा नहीं हुए तो शरीर ही नहीं है तो नष्ट क्या होगा। पर यह सब सिस्टम, वो मृत्यु हो अमृत हो, वो हमारे हाथ में नहीं, हम कंट्रोल नहीं करते, हम उसको मैनेज नहीं करते, उसको वो परमात्मा करता है। यस्य छाया मृत्यु अमृतम च, Yasya chaya amritam, yasya mrityu, kasmei devaya havisha vidhema. पिछली बार भी मंत्र के लास्ट में आया था, ये अभी तीन चार मंत्र जो हैं, हिरण्यगर्भ से लेकर ये न देवरुग्र, ये चार मंत्र एक ही सूक्त से लिया गया है और हरेक के लास्ट में ये आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। क आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उस परमात्मा, उस आनंद स्वरूप देवता के लिए हम हवि के द्वारा जो कुछ भी हम ऑफर कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्लेशन से हम ऑफर कर रहे हैं, उसके द्वारा हम अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। पूरे मंत्र का भाव, फिर अगले मंत्र पर चलेंगे। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। वो परमात्मा जो आत्मबल देने वाला है और फिजिकल बल देने वाला है, जिसकी गवर्नेंस को हर कोई फॉलो करता है, उपासना करता है, जिसकी मृत्यु और अमर होना जिसकी अपनी सिस्टम है, उस परमात्मा आनंद स्वरूप को हम प्रार्थना करते हैं। उसके खूबसूरत कविता है जो कभी कभी हम बोलते हैं, तू ही आत्म ज्ञान बल दाता, सुयस विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी भक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। इस कविता में पूरा लिटरेरी मीनिंग नहीं है, पर थोड़ा इमोशन को वो करने के लिए अच्छा है। अगला मंत्र चलते हैं। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्रा जा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। उसी ऋग्वेद के दसवें मंडल 121वां सूक्त तीसरा मंत्र है, यजुर्वेद में ये 25वें अध्याय 11वें मंत्र के रूप में हमें मिलता है। इसका ट्रांसलेशन, यह महित्वा एक इत राजा बभूव, जो अपनी सब्लिमिटी से, अपनी ग्रेटनेस से अकेला सारा संसार का राजा रूलर बना। और वो संसार में कौन कौन है? प्राणत निमिषत जगत, ये जो मूवेबल संसार है, जगत है, जो 24 घंटे मूव करता रहता है, ऐसे हमेशा मूव करने वाले मूविंग वर्ल्ड में जो कुछ भी सांस लेने वाले हैं, मतलब हम सब, या बिना सांस लेने वाले जो पहाड़ पर्वत हैं, या जो निमिषत, जो ब्लिंकिंग करने वाले प्राणी, उन सबका वो राजा बना। और यह ईशे अस्य द्विपदश चतुष्पदः, और जो ईश करता है, रूल करता है, गवर्न करता है, इसके ऊपर जो भी द्विपद हैं, पद कहते हैं पैर, फुट, द्वि दो पैर वाले, दो पग वाले, जैसे इंसान है, और कौन दो पैर में चलता है, जो बर्ड्स हैं, तो जितने भी दो पैर वाले, या चतुष्पद चार पैर वाले जानवर हैं। तो इसका अर्थ नहीं कि सारे जो लाइफ हैं वो सिर्फ दो ही पैर वाले, चार पैर वाले होते हैं, फिर छह भी होते हैं, आठ भी होते हैं, अलग अलग पैर वाले हो सकते हैं, पर ये जस्ट एक सिंबॉलिकली बताया, मतलब जितने भी पैर वाले या बिना पैर वाले जो भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों को शासन करता है, रूल करता है, गवर्न करता है। जो गवर्न करता है, जो सबका राजा है, उस आनंद स्वरूप देवता के लिए कहमल आनंद, हम अपनी जो कुछ हमारे पास है उसको ऑफर करके उसकी भक्ति करते हैं। तो पहला लाइन, यह महित्वा एक इत राजा बभूव, प्राणतः निमिषतः जगतः, वो जो मूविंग वर्ल्ड है उसमें जो कुछ भी लाइफ या सेंटिएंट या इनसेंटिएंट है ना, जीव या जड़ जो कुछ भी हैं, उन सबका अपनी महिमा से राजा वो अकेला बना। एक चीज इसमें देखिए, वो ये देखिए एक, ये एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक मतलब अकेला, वन सिंगल। देखो परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, कोई दो चार दस बीस पचास नहीं है, कोई क्रिश्चियन गॉड, कोई मुस्लिम गॉड, कोई हिंदू गॉड, कोई बुद्धिस्ट गॉड, मेरा गॉड तुम्हारा गॉड नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा कार्तिका पचासों दर्जनों गॉड नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। और सारे वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र गीता महाभारत रामायण जो कुछ भी आपने पढ़ा है या सुना है, सब में एक ही बात कहता है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। पर मजेदार बात क्या है पता है, जब हम कहीं जाते हैं लोगों के घर में या कभी मिलते हैं तो वो पूछते हैं, जैसा जैसे आर्य समाज के बारे में सुना, तो अच्छा आप यज्ञ करते हो तो कौन से भगवान को पूछते हो, तो मैं उनको पूछता हूं तो बताओ कितने भगवान है, तो बहुत सारे भगवान है। मतलब पिछले हजार दो हजार साल से हमने हिंदुओं अपने लोगों को, हमने मतलब धर्माचार्यों ने जिन्होंने भी धर्म का ज्ञान उनको दिया है, इतना ज्यादा उनको भ्रमित कर दिया है, मोस्ट ऑफ हिंदुओं को लगता है बहुत सारे भगवान हैं। और कोई भी हिंदू शास्त्र ऐसा नहीं जो बोलता है बहुत सारे भगवान हैं। पता नहीं कैसे हम कैसे किस हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, मतलब हमारे शास्त्र कुछ कहते हैं और हम कुछ और मानते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है गुप्ता घर का बेटा वो क्या कहते हैं शर्मा बन गया है, शर्मा घर का बेटा वो वर्मा बन गया, मतलब है तो एक फैमिली का पर बातें करता है दूसरी फैमिली का। ये हिंदू लोगों की ये बड़ी दुर्दशा है, हर वो सिंगल थॉट उनके जो उनके दिमाग में सब 99.99% गलत लेकर बैठे, दोष उनका नहीं है, जिन्होंने उनको ज्ञान बांटा है वो धर्माचार्य का है। एक रट लीजिए और जिसको भी मिले सुना दीजिए, एक वो ईश्वर एक है, एक है, एक है। परमात्मा अकेला है जो सारे संसार का राजा है, राजा सिर्फ हमारा और आपका नहीं, इस सूरज का भी राजा, इस नक्षत्रों का भी राजा, धरती का भी राजा, जड़ों का भी राजा, चेतन का भी राजा। राजा क्या, राजा मतलब रूलर है ना, कंट्रोलर है, जो शासन करता है, गवर्न करता है, गवर्नर है, वही तो चलाता है। सूरज अपनी मर्जी से थोड़े ही चलता है, चांद अपनी मर्जी से थोड़े ही चलता है, कोई पशु पक्षी प्राणी हवा पानी सबके लिए फिक्स्ड है, सबके। अभी जो पिछले मंत्र में आपने पढ़ा, सब अपने अपने लिए बनाए गए रूल्स को फॉलो करते रहते हैं, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ते ना पीछे बढ़ते हैं। आपको हो गया ऐसा कैसे, सुनामी आती है तो पानी फिर ज्यादा करते हैं ना, ये जो तूफान आता है जो हरिकेन्स वगैरह आते हैं तो हवा फिर विंड तो फिर अपनी अपनी गवर्नेंस के से आगे बढ़ जाता है। ये सब क्या है, ये भूकंप आता है तो ये सब क्या है जो कैलामिटी जाती है, ये भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए रूल्स है। ये पानी अपने आप पानी में सुनामी नहीं आती है, ये बर्बादी अपने आप नहीं होती है, जो भी नेचुरल कैलामिटी है वो कैलामिटी होना भी पार्ट ऑफ नेचर है, उनको समय समय पर होना है, बैलेंस बनाना है, चीजें का गड़बड़ होते रहना है। अरे आज नहीं हो रहे कल नहीं हो रहे, जब से सृष्टि हुई ये धरती में कितने बदलाव आए, ये जो कॉन्टिनेंट्स आप कहते हो एशिया अमेरिका अफ्रीका ये कुछ लाख साल पहले ऐसा नहीं थे, दूसरे टाइप के कॉन्टिनेंट थे, ये सागर ऐसे नहीं थे, सागर बदल गए, ये अरब जो आज रेगिस्तान बना हुआ है कभी वो समुन्दर था, ये बदलते रहते हैं। और ये बदलना भी परमात्मा के रूल्स की पार्ट है। हमें क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, सफर करते हैं, तो फिर हमें लगता है ये तो अन्याय हो गया। नहीं, ये पार्ट ऑफ नेचर है, जब हम इसमें रहते हैं हमें फेस करना पड़ता है। तो अकेला शासक परमात्मा जो भी प्राणत प्राण लेने वाले, निमिषत ब्लिंक करने वाले, मतलब पशु पक्षी उन सबका, और जो जगत है, ये जगत वर्ड जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। यूनिवर्स के लिए हमारे यहां दो तीन शब्द है, संसार है, जगत है। जगत का भी अर्थ वही है, क्या? कॉन्स्टेंटली मूविंग। संसार का भी अर्थ वही है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो यूनिवर्स के लिए हमारे यहां जितने भी शब्द मिलते हैं सबका अर्थ होता है जो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक मूव करता है। तो देखिए दुनिया में कौन सा चीज है जो मूव नहीं करता है? आपकी धरती है, घूमती है, आपके सूरज घूमता है, आपका चांद घूमता है, हर चीज घूमता है और हर चीज मूव करता है। घूमने की बात नहीं, मूव, आप भी तो मूव करते हो, सोते हुए भी आपके शरीर में बदलाव होता रहता है। मूव मतलब चेंज, वंस यू स्टार्ट टू मूव द चेंज स्टार्ट्स। तो जहां भी चेंजेस हो रहे हैं वो सबके सब मूवमेंट के कारण हो रहे हैं ना। तो संसार का हर वो छोटा से छोटा चीज, पार्टिकल से लेकर, एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के द होल यूनिवर्स, हर मूवमेंट चेंज होते रहते हैं, उनके अंदर मूवमेंट है। यानी कि हमारे शब्द भी, जो सनातन धर्म के शास्त्रों में जो शब्द यूज किया गया वो भी कितना वेल थॉट, वेल डिलिबरेटेड वर्ड है। वो वर्ड ही आपको एक्सप्लेन कर देता है किसी भी चीज की जो नेचर है, ये है जगत और संसार। तो इस एवरी टाइम कॉन्स्टेंटली मूविंग यूनिवर्स में वो परमात्मा सबका राजा है। यह इसे अस्य द्विपदश चतुष्पद, और वो परमात्मा न केवल सारा संसार को गवर्न करता है, हम जैसे पशु पक्षी प्राणी इंसानों को भी वो रेगुलेट करता है। हम तो उस गाय की तरह हैं जिसके गले में रस्सी बंधी है, और वो गांव में क्या करते हैं, दो चार में 50-100 मीटर की एक रस्सी लेकर के गले में बांध देते हैं, खूंटी में बांध देते हैं, और वो घास चरने के लिए गाय को छोड़ देते हैं, जिससे कि गाय कहीं भागे नहीं और फील्ड में घास भी चरता रहे। वो 100 मीटर के दायरे में घूमती रहती है, जो रोज घूमता रहता है गाय, गाय को आदत पड़ जाती है। अब गाय सोचने लगता है कि मैं फ्री हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। वो जा सकता है 100 square miles, वो मीटर में, तो वो कहीं भी जा सकता है। पर जैसे ही उसकी फ्रीडम की लत बढ़ जाती है, वो थोड़ा दौड़ने लगता है, तो 100 मीटर की लिमिट को क्रश करते ही गले में खिंचाव शुरू हो जाता है, फिर समझ जाता है भाई इसके अंदर ही है। इसी तरह हम जो अकड़ते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हो एक उतना जितना परमात्मा ने आपके लिए दायरा बना दिया, वो पीछे से कंट्रोल करता है तुम्हें, मुझे, सारे दुनिया को। ऐसे परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसको हम नमन करते हैं। तो ये दो मंत्र आज किया, यह आत्मदा बलदा और यह प्राणतो। बाकी दो मंत्र अगले बार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनाउंसमेंट और